We'll continue with Bhakti Shatak from Doha number 68.
Jai Radhe Krishna Radhe 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 Krishna Radhe. 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 Radhe Krishna Radhe 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 Krishna Radhe. Jai Radhe, Jai Radhe, Radhe, Jai Radhe. Radhe Jai Radhe Jai Radhe.
Turn it on.
Krishna Jai Krishna Jai Krishna Punya Det Phal Nashwar Paap Narak Le Jai Radhe Radhe. Phal Nashwar Paap Le Jai Radhe Radhe. Punya Det Phal Nashwar Paap Narak Le Jai Radhe Radhe. Paap Narak Le Jai Radhe Radhe. Do Natajijo
Hari bhaje sohi param pad paaye radhe radhe gaun taji jo hari bhaje sohi param pad paaye radhe radhe dun taji jo hari bhaje sohi param pad paaye radhe radhe जय राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे 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 जय राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे
In the first doha that we're looking at this evening, Shri Kripaluji Maharaj sums up the whole philosophy of the Gita. He says that punya, meaning good actions, doing one's dharma, gives an outcome which is nashwar. It's short-lived. It's temporary. And pap, doing a bad action, that leads to narak. Both are binding. Therefore, dohun taji, jo hari bhaje, the one who renounces both good actions and bad actions, both dharma and adharma, and worships God, that person attains the parampad, the supreme divine realization. In the Gita, we find the very same thing. In the beginning, Arjun doesn't want to fight because he doesn't want to kill unnecessarily, although it's his duty to uphold the laws and use force if necessary to do so. So Shri Krishna advises him, Hato va prapsyasi swargam jitva va bhokshyase mahim. Tasmadut Tishtha Kaunteya Yuddhaya Krita Nishchaya. Hey Arjun, You should fight this war. Why? Because it's your duty to fight the war. It's your duty to uphold dharma and to bring to justice those who are doing adharma. So fight the war. If you're killed in the war doing your duty, you'll go to swarg. And if you win the war, you'll rule the earth. But if you ignore your duty and refuse to fight the war, you'll go to narak, because that would be a pap. This is how the Gita begins. This is in the second chapter. So Arjuna is thinking that swarg is nashwar, and I've already experienced the kingship of this earth. Both provide nothing more than temporary material mayic pleasures. So that's not much of an incentive. And of course, going to narak, nobody wants to go to narak, but it looks to me like these two options both lead to bondage, and it's a fact. So main samjha raha hu ki Gita mein yahi likha hai. Pehle Shri Krishna ne Arjun ko samjhaya ki apne dharma ka palan karne se swarg milega. Yadi, kyunki tumhara dharm, tum kshatriya ho, tumhara dharm hai ki inko harana hai, Duryodhan vagara. To apna dharm karo, palan karo. Yadi tum mara jayega, to swarg paega. Aur jitoge to puri prithvi ka rajya hoga. To Arjun ne socha ki wo to main bhog chuka hu prithvi ka rajya, itni badi baat nahi hai. Aur swarg mein to main janta hu ki nashwar hi sukh milta hai swarg mein, wo bhi maya ke area mein padta hai. Aur main narak bhi nahi jana chahta hu, to main kya karu? Yadi main dharma ka palan karta hu to swarg milega, wo bhi bandhan karak hai. Yadi main adharm karta hu to narak jaunga, wo bhi bandhan hai. Dono taraf bandhan hai. Tab jab Arjun ne ye samjha hai, tab Shri Krishna ne kaha, tasmat sarveshu kaleshu mamanusmara yudhyacha. Hey Arjun, na dharm ka palan karo aur na adharm karo. Na punya karo aur na paap karo. To fir kya karo? Mera smaran karo, ye pehli baat hai. Aur karte hue, mera smaran karte hue, yuddh karo. Yani, dharma ka palan karo, apna kartavya karo, lekin mera smaran ke saath saath. Punya kya hai? Punya ka matlab hai Bhagwan ka smaran na karke apna dharma karo, apna kartavya karna. Ye punya hai. Aur paap kya hai? Bhagwan ka smaran na karke, na karte hue apne dharma ka palan na karein, adharma karein, vikarma karein. Ye paap hai. To Shri Krishna keh rahe hain ki na punya karein aur na paap karein. Mera smaran karo aur example bano sansar ke liye, aam logon ke liye adarsh sthapit karo. Kyunki log to tumhare bhagwan ka smaran ka anukaran nahi kar payenge. Wo andar dekh ke janch nahi kar sakte hain. उनको क्या मालूम है कि तुम मेरा स्मरण कर रहे हो कि किसी और का स्मरण कर रहे हो। लेकिन बाहरी चीज का अनुकरण तो कर सकते हैं और देखेंगे क्या। अर्जुन सोच रहे हैं कि मैं ये सारा युद्ध वगैरह इसको छोड़ के मैं जंगल में जाऊं या कहीं भी जाऊं और भक्ति ही करूं, भगवान का ही स्मरण करूं तो ये ज्यादा अच्छा है, मैं युद्ध क्यों करूं। तो श्री कृष्ण ने कहा कि हाँ ठीक है, यदि तुम ये सारा युद्ध छोड़ के कहीं जाके मेरा स्मरण करोगे तो मुझे पाओगे, ये कर्म संन्यास है। लेकिन लोग उसको देखकर क्या करेंगे, वो यही देखेंगे कि अर्जुन ने अपने कर्तव्य को छोड़ा, धर्म को छोड़ा। अंदर उनको मालूम नहीं होगा कि तुम मेरा स्मरण कर रहे हो, इसलिए धर्म के आदर्श का की स्थापना के लिए कर्तव्य भी करो लेकिन मन मुझ में रखना है। तो तुम पुण्य और पाप के परे जाओगे और मुझे पाओगे, यानी परम पद पाओगे। सो इन रिस्पॉन्स टू अर्जुन्स डिलेमा ऑफ वेदर टू फाइट एंड डू हिज ड्यूटी और नॉट, श्री कृष्ण एक्सप्लेन दैट यू कैन ट्रांसेंड बोथ गुड एंड बैड एक्शंस इफ यू कीप योर माइंड इन मी। सो इंस्टेड ऑफ जस्ट परफॉर्मिंग द एक्शन ऑफ फाइटिंग द वॉर एंड डूइंग योर ड्यूटी, कीप योर माइंड इन मी, Remember me while you perform your duty. This is karma yoga. Karma sannyas would be to abandon the battlefield and go and think of God. Shri Krishna said, you would also attain me if you did that, because the one who remembers me attains me, but I want you to set an example for the world, Arjun, because they can't see that you're remembering me. They'll only see that you abandoned your duty, you abandoned the battlefield. So perform your duty, stay here in the battlefield and do your dharma, but with your mind in me, and then you will rise above good and bad actions. You will transcend punya and pap, and you will attain me, you will attain the divine world. So this is the essence of the whole Gita, which Sri Maharajji has put here in this one doha. This reminds us of this important point that good actions alone are not enough. I meet so many people who have a basic belief that all I need to do is be a good person and after I die I'll go to God. That's actually not the philosophy of our scriptures. Being a good person is good, it's a good start, but just being good, just doing punya, will only at most result in you going to swarg temporarily. It doesn't result in attaining God. To attain God, we have to follow the path to God, which requires us to think of God continuously throughout the day. Whether we are a karma yogi or a karma sannyasi, we have to think of God throughout the day, which purifies our heart and allows us to become surrendered to God. No one attains God after death. That, oh, if I'm a good person, maybe I'll go to God. You attain God in life. When your heart reaches the point of 100% purification, God will appear before you. Then you'll become God realized right then and there in life. And then when the time of your death comes, of course you'll go to God. But there wouldn't be a doubt in it. If you haven't attained God before death, then there's no doubt you're not going to God. You'll be reborn according to your punya and your pap. And you'll go forward from wherever you left off. But there's no possibility, there's no doubt on either side. Will I attain God or will I not attain God? You'll already know, because if you've attained God in life, you will go to Him after you leave your body. So we'll move on to the next doha now. Jai Radhe Krishna, Radhe, Radhe, Radhe Krishna, Radhe. 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 Jai Radhe, Jai Radhe, Radhe, Jai Radhe, Jai Radhe, Radhe, Jai Radhe, Jai Radhe, Radhe. Krishna, Jai Krishna, Jai Krishna, Krishna, Jai Krishna. Krishna, Jai Krishna, Jai Krishna, Krishna, Jai. Bhagati ek Aishwarya aru ek madhurya kahai Radhe Radhe Bhagati ek Aishwarya aru ek madhurya kaha Bhagati ek Aishwarya aru ek madhurya kahai Radhe Radhe Aishwarya rasa Braja rasikana Na suhai radhe radhe. Aishwarya rasa braj rasikana na suhaya pani rasa aishwarya rasa braj rasikana na suhai radhe radhe niras aishwarya ras raj rasika. Jai Radhe Krishna Radhe 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 Krishna Radhe. 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 Jai Radhe Krishna Radhe 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 Krishna Radhe.
भक्ति के दो रूप हैं, एक भक्ति ऐश्वर्य भक्ति है और एक भक्ति माधुरी भक्ति है। देखिए, भगवान के दो प्रमुख रूप हैं, द्वैवाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तं चैवा मूर्तं च, बृहदारण्यकोपनिषद कहती है कि एक ही भगवान साकार भी हैं और निराकार भी हैं। साकार ब्रह्म, साकार भगवान से हम संबंध रख सकते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं रिलेशनशिप, वो हम रख सकते हैं, क्योंकि साकार भगवान से को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उनसे बात भी हो सकती है, उनका आलिंगन कर सकते हैं, ये सब हो सकता है साकार भगवान के साथ। लेकिन निराकार ब्रह्म जो हैं, ना उनको देख सकते हैं, ना उनको छू सकते हैं, कोई व्यवहार संभव नहीं है निराकार ब्रह्म के साथ। तो निराकार ब्रह्म से प्रेम करना, हम प्रेम कैसे करेंगे, प्यार कैसे करेंगे, हम जानते भी नहीं है कि उनका आकार क्या है, उनका आकार है नहीं तो किससे प्यार करेंगे। तो रिलेशनशिप नहीं बना सकते हैं निराकार ब्रह्म से, लेकिन साकार ब्रह्म से तो हम संबंध रख सकते हैं। साकार ब्रह्म में भी दो प्रमुख रूप हैं, वही एक ही भगवान
हमेशा अनादिकाल से निराकार ब्रह्म के रूप में सर्वव्यापक हैं और साकार ब्रह्म के रूप में भी सर्वव्यापक हैं। अब साकार ब्रह्म, साकार भगवान को देखिए, उनके भी दो रूप हैं, एक ऐश्वर्य रूप, एक माधुर्य रूप। ऐश्वर्य रूप भी अनेक हैं और माधुर्य रूप भी कई होते हैं। उनके ऐश्वर्य रूप आप लोग जानते हैं, विष्णु, शिव, दुर्गा, काली, कार्तिकेय, ये सब भगवान के ऐश्वर्य रूप हैं। लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती। और भगवान के माधुर्य रूप हैं सीताराम, राधा कृष्ण, और उनके भी कई रूप हैं, जैसे कुंज वाले श्री कृष्ण, उससे पहले द्वारिका वाले श्री कृष्ण, मथुरा वाले श्री कृष्ण, ब्रज वाले श्री कृष्ण। ब्रज वाले श्री कृष्ण के भी कई रूप हैं, कुंज वाले श्री कृष्ण, निकुंज वाले श्री कृष्ण, निभृत निकुंज वाले श्री कृष्ण, ये सब उनके नाम हैं। लेकिन दो प्रमुख भाग हैं, वही श्री कृष्ण माधुर्य रूप में हमेशा अनादिकाल से हैं और ऐश्वर्य रूप में भी हैं। तो भक्ति के भी दो रूप प्रमुख हैं, ऐश्वर्य भक्ति और माधुर्य भक्ति। तो ऐश्वर्य भक्ति जो करता है, जो भी भक्त करता है, वो भगवान को अपने राजा मानकर भक्ति करता है, उसको शांत भाव कहते हैं। माने संबंध है, वे मेरे राजा हैं, मैं उनका प्रजा हूं। ही इज द किंग, आई एम द सब्जेक्ट। ये संबंध है ना, तो संबंध हो गया मैं और भगवान से। लेकिन जो माधुर्य रूप में भगवान की भक्ति करता है, उनको लगता है, उनको हम उन भक्तों को कहते हैं रसिक भक्त, रसिक महापुरुष, क्योंकि वो भगवान के माधुर्य वाले रूप का रस पान करते हैं, इसलिए हम उनको रसिक कहते हैं। ये रसिक महापुरुष कहते हैं कि वो जो शांत भाव है, वो जो ऐश्वर्य भक्ति है, वो नीरस है। नीरस क्यों है? क्योंकि शांत भाव में तो आप प्रजा ही हैं और भगवान राजा बैठे रहते हैं, बने रहते हैं। तो आप सोचिए, यदि कभी मौका मिले किसी राजा से पास आने का या देखने का मौका मिले, तो कितना बड़ा एंटूराज, जैसे हम कहते हैं अंग्रेजी में, कितने लोग उनको घेरे रहते हैं, सिक्योरिटी वगैरह। तो वो संबंध दूर वाला संबंध है। आप राजा के पास आके बात तो नहीं कर सकते हैं, ऐसे ही अपॉइंटमेंट बनाना पड़ेगा, और वो भी पता नहीं यदि अपॉइंटमेंट मिलेगा कि नहीं। तो राजा से संबंध दूर रहता है, शायद बात भी नहीं हो पाता। तो जब हम ये सोचते हैं कि भगवान आप मेरे राजा हैं, आप मेरी महारानी हैं और मैं प्रजा हूं, संबंध है लेकिन दूर है। कुछ लोगों को ये ज्यादा पसंद है, उनको ज्यादा अच्छा लगता है, ये जरा दूर रखने वाला है कि भगवान आप भगवान हैं, मैं तुच्छ जीव हूं, आप मेरे राजा हैं, मैं प्रजा हूं उनको ये ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन रसिक महापुरुष लोग कहते हैं कि वो तो हमको लगता है कि ये नीरस है, हमको ये माधुर्य रूप चाहिए। जब श्री कृष्ण अपना माधुर्य रूप धारण करते हैं तब हम बहुत पास आ सकते हैं, तब दास्य भाव भी संभव है, सख्य भाव भी संभव है, वात्सल्य भाव भी संभव है और माधुर्य भाव भी संभव है। देखिए अर्जुन सख्य भाव के उपासक थे, श्री कृष्ण को सखा मानते थे, कजिन्स थे ना, दोस्त थे। लेकिन जब उन्होंने ये दिव्य दृष्टि मांगा और कहा कि द्रष्टुमिच्छामि, मुझे ये ऐश्वर्य रूप देखना है, द्रष्टुमिच्छामि ते रूप मैश्वरम पुरुषोत्तम, मैं आपके ऐश्वर्य रूप को देखना चाहता हूं। तो श्री कृष्ण ने दिव्य दृष्टि देकर अपना उस रूप में दर्शन दिया और अर्जुन कांपने लगे। फिर अंत में उन्होंने कहा कि मुझे ये रूप नहीं चाहिए, आप मेरे सखा रूप में दोबारा आ जाइए, उसमें रस है, इस रूप में क्या रस मिलेगा। अर्जुन उस रूप में भगवान को चारों ओर हजारों करोड़ों सिर हाथ पैर सब कहीं, तो ये उनका ऐश्वर्य रूप है। कुछ लोग उस रूप की भक्ति करना चाहते हैं, वो लोग भी उनको पाएंगे। लेकिन जो और पास वाला संबंध रखना चाहता है वो माधुर्य भक्ति करते हैं। माधुर्य भक्ति में हम भगवान की भगवत्ता को निकालते हैं, हम भगवान को भगवान नहीं मानते और भगवान भी अपने आप को भगवान नहीं मानते। अब मैं संत की बात भी कर रहा हूं, हम लोग तो साधक हैं, अपने रूप ध्यान में हम भी ऐसे बन सकते हैं। लेकिन संत लोग हैं जो सिद्ध हैं, जो भगवान के धाम में गए हैं, वे भी जिसने ऐसी भक्ति की है भगवान के दिव्य लोक में जाकर उनसे ऐसा व्यवहार करते हैं। यदि उनका दास्य भाव था तो वहां जाके भगवान का दास बनकर बहुत समीप रहते हैं भगवान से, और भगवान अपने आप को स्वामी मानते हैं और भक्त को दास मानते हैं। जिसने सख्य भाव से भक्ति किया है वो तो बिल्कुल फर्क नहीं मानता है, ये तुम तो मेरे दोस्त हो, श्री कृष्ण भी नहीं बोलेंगे, हे कन्हैया तुम तो मेरे दोस्त हो, इधर आओ बात करनी है तुमसे, ऐसे बात करेंगे ठाकुर जी से। ये सख्य भाव है, उसमें ज्यादा रस है, और ठाकुर जी भी अपने आप को दोस्त ही मानते हैं, वो भी अब भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूं, और उनको भी मानस आनंद मिलता है उससे। भगवान को जो आनंद मिलता है इससे ये ज्यादा है अपने स्वरूप आनंद से, वो तो आनंद है ऑलरेडी भगवान, लेकिन इस दास्य भाव सख्य भाव वगैरह से उनको भी ज्यादा आनंद मिलता है। जो वात्सल्य भाव से भक्ति करता है वो तो भगवान को बिल्कुल भगवान नहीं मानता है, वो तो अपना बेटा मानता है, इतना अधिकार है, और भगवान भी मान लेते हैं कि मैं तो आप तो मां हैं, मैं पुत्र हूं, जो भी आप कहेंगी मैं करूंगा, कोई चॉइस नहीं है, मैं तुम तो मेरे सर्वस्व हो, ऐसी भावना होंगी श्री कृष्ण में। और जो माधुरी भाव से भगवान से प्यार करता है वो तो भगवान को प्रियतम मानता है, तो भगवान उस जीव को प्रेयसी मानता है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, तो उसमें बहुत ज्यादा रस है। इसलिए रसिक लोग कहते हैं कि हम आपका ऐश्वर्य रूप नहीं चाहते हैं, हम आपको इस माधुर्य रूप में चाहते हैं। इसलिए लिखा है कि भगति एक ऐश्वर्य अरु एक माधुर्य कहाय, पे नीरस ऐश्वर्य रस ब्रज रसिकन न सुहाय। So I've been explaining that in this Doha, Kripaluji Maharaj has told that there are two ways to worship God in his personal form. One is thinking of him as God and being conscious of his almightiness. And the other is to forget about his almightiness and not even think of him as God, but to think of him as your loving master or your best friend, or your very own child, or your very own beloved. And in doing so, you are completely unconscious of the fact that God is God. And God also forgets about his godliness. Not just sets it aside, but literally forgets about it in front of that devotee who loves him in that way. So we have a choice how to love him. If we prefer to think of him as Almighty God, that's also one way of doing devotion. It's called Shant Bhav. We think of him as our divine king, and we're one of the subjects in his kingdom. But if we prefer what's called the Madhurya Bhakti, where we think of God more closely, then we can think of ourselves as one of his personal servants, or as a personal friend, or as a parent, as his mother or father, or as his beloved. So this allows us much more closeness and gives us an experience, a sweeter experience in relationship with God. When the next Doha, it's told that, I also explained that Shri Krishna himself has several different forms. So there's Shri Krishna of Dwarika abode, Shri Krishna of Mathura abode, and Shri Krishna of Braj, also called Golok. We called it Braj when he was here on earth. His abode in the divine world is called Golok. So the same Shri Krishna exists in these three different abodes, but, and in all three abodes, he gives unlimited bliss. So Shri Maharaj Ji says, Sabe saras ras Dwarika Mathura Aru Braj Mahi. All of them are the very form of bliss, and Shri Krishna gives unlimited bliss in all three. However, madhur madhuratar madhuratam ras braj ras samanahi. He says that braj ras is the sweetest. So madhur means sweet, madhuratar means sweeter, and madhuratam means the sweetest. Dwarika is sweet, but in Dwarika, Shri Krishna maintains or retains some of his godly comportment. Dwarika mein hamare Shri Krishna abhi bhi bhagwan hai. Wo bhan hai. Bhagwan ko bhi aur bhakt ko bhi. Ki main bhagwan hu. Ye bhagwan hai. मथुरा में ये कम है, इसलिए माधुर्य ज्यादा है, अधिक है। इसलिए द्वारिका का रस मधुर कहा जा रहा है इसमें। मथुरा का रस मधुरतर कहा जा रहा है और ब्रज में कोई भान नहीं है कि मैं भगवान हूं, ना भगवान को और ना भक्त को भान है कि ये भगवान है और मैं तुच्छ जीव हूं। केवल संबंध का भान है कि मैं दोस्त हूं, मैं मां हूं या मैं प्रियतम हूं, मैं प्रेयसी हूं, वे प्रियतम है। सो द ब्लिस ऑफ द्वारिका बोर्ड इज स्वीट, द ब्लिस ऑफ मथुरा बोर्ड इज स्वीटर, एंड द ब्लिस ऑफ गोलोक और ब्रज इज द स्वीटेस्ट, बिकॉज इन ब्रज श्री कृष्ण कंप्लीटली फॉरगेट्स दैट ही इज गॉड, एंड द भक्त सेंट्स ऑल्सो कंप्लीटली आर unconscious of the fact that he's God, and they drown themselves in the extreme sweetness of their relationship and their interaction with Shri Krishna. Ab braj mein, golok mein, ye rasik mahapurush leelaon mein bhag lete hain, aur un leelaon se unko ye madhurtam ras हमेशा मिलता है और उसमें डूबे रहते हैं, श्री कृष्ण भी डूबे रहते हैं। इसलिए ब्रज में, गोलोक में सब भूल जाते हैं कि कौन भगवान कौन जीव, बस उस दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस या माधुर्य रस में डूबे रहते हैं हमेशा 24 घंटे। इसलिए ब्रज के रस के बारे में कृपालु जी महाराज कह रहे हैं कि ये मधुरतम है। सो विल सिंग दिस दोहा एज वेल। जय राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे, 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 जय राधे जय राधे राधे। राधे जय राधे जय राधे राधे, कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण, कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण, सब सरस रस
Dwarika Mathura Aru Braj Mahi Radhe Radhe. Sabe saras ras Dwarika Mathura Aru Braj Mahi Radhe Radhe. Madhur madhur tar madhur tam ras braj ras sam nahi radhe radhe. Madhur madhur tar madhur tam ras braj ras samanahi radhe radhe. Radhe Krishna Radhe 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 Krishna Radhe. Jai 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 Radhe Krishna.
Bolo Shyama Shyam ki jai.